राधिका, आदर्श और आयशा इशिका से मिलने के लिए आए थे। आदर्श और आयशा राधिका को इसलिए लेकर आए थे ताकि वे इशिका को मजबूर करके इस हत्या को अपने सिर लेने के लिए कह सके। बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि आदर्श इतने सालों तक जो पैसे इशिका को रहने खाने के लिए भेज रहे थे वो कभी उस तक पहुंचे ही नहीं। शायद यही उसकी बीमारी की वजह थी कि उसने इतनी मेहनत की और उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाया। आदर्श ऐसे जता रहा था जैसे उसने एक बाप होने के सारे फर्ज निभाए हो। उसकी बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कराहट थी। राधिका ने गहरी सांस ली और आदर्श से कहा, जो भी हो, इशिका ने बहुत मेहनत करके खुद को कामयाब किया है। आप एक बाप के तौर पर नाकामयाब रहे हो आदर्श, क्योंकि इशिका आपकी बेटी होने के बावजूद इतने बुरे हालातों में रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये इसकी माँ का ही किया धरा है। मालविका से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी बेटी को बुरे हालातों में रख रही है। दूसरी तरफ तुम हो जो कुछ ज्यादा ही दया दिखा रही हो, ये बिल्कुल ठीक है, फिर भी इससे मिलने के लिए आई हो, आदर्श ने जवाब दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाने के बाद आदर्श ने इशिका की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, हम नीचे आए थे तब हमने लॉयर से बात की और पता चला कि तुम्हारे अंकल तुम्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। इन सब चीजों को कोई नहीं देखेगा। तुमने उसे मारा है तो उसे एक्सेप्ट करो, सजा भी कम होगी, ऊपर से फिर बात भी दब जाएगी। तुम्हें पता भी है इन सब की वजह से हमारी कंपनी के शेयर गिर गए तो हमारी क्या हालत होगी। ऊपर से मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले कि तुम सिंघानिया खानदान की बेटी हो। वैसे भी थोड़े बहुत लोगों को इस बारे में पता है तो हमें काफी बदनामी सहन करनी पड़ती है। इशिका हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। क्या ये उसकी गलती थी जो वो आदर्श की नाजायज औलाद थी? आदर्श का साथ देते हुए आयशा ने कहा, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनफैक्ट वो तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं। पहले ही लोग तुम्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, अगर ऐसे में सिंघानिया फैमिली से तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई बाहर आई तो वो हमें भी भला बुरा कहेंगे और हमारी कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी गलती मान लेती हो तो तुम्हें सजा भी कम होगी और इसी में तुम्हारा फायदा है इशिका। इशिका को उन दोनों पर अफसोस हो रहा था। अब ऊपर से उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के लिए राधिका को भी अपने साथ मिल लिया था। उनसे अलग राधिका ने इशिका का हाथ थपथपाया और सख्ती से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? क्या सच में तुमने उसे गलती से मार दिया था? नहीं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, इशिका ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत है? राधिका ने आगे पूछा। राधिका के इस सवाल के साथ ही आयशा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे जिसे इशिका ने नोटिस कर लिया था। उसने गहरी सांस ली और नामे सिर हिला दिया था। इसी के साथ आयशा ने राहत की सांस ली। आयशा तो बेफिक्र हो चुकी थी लेकिन अब राधिका परेशान थी। उसने इशिका से कहा, मैंने पुलिस स्टेशन में बात की थी और पता चला कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अगर हमने केस किया तो तुम हार जाओगी और हारने का मतलब समझती हो ना तुम इशिका। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, मैंने लॉयर से बात की तो उसने यही बताया कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी सजा कम हो जाए। राधिका भी आदर्श और आयशा की भाषा बोल रही थी। ये देखकर इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी राधिका ने कहा, कोई कुछ भी कहे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम सच्ची हो तो सच के साथ खड़ी रहो, फिर तुम्हें कोई नहीं झुका पाएगा। इशिका ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। चलो, कोई तो था जो उस पर यकीन करके बिना सवाल के उसका साथ देना चाहता था। लेकिन तभी आदर्श ने चिल्लाकर कहा, राधिका प्लीज बेवकूफी वाली हरकतें मत करो। वो उस वक्त एक ऐसी जगह पर थी जहां उनके अलावा और कोई नहीं था, तो क्या किसी भूत ने आकर उसे मार दिया? आयशा भी गुस्से से चिल्ला पड़ी, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने इसे अच्छा खासा मना लिया था लेकिन आपकी बातों की वजह से फिर से ये अपनी जिद पर अड़ जाएगी। आपको पता भी है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरी और नक्श की सगाई टूट जाएगी। आप फिर से एक नाजायज औलाद के लिए अपनी जायज बेटी के साथ अन्याय कैसे कर सकती हैं? उसकी फिर से वही बातें सुनकर राधिका हैरान रह गई। यही मौका था जब आयशा को अपना फाइनल खेल खेलना था। वो रोते हुए बोली, आप हर बात भूल क्यों जाती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे जन्म दिया है और ये उस औरत की बेटी है जिसने आपकी शादी और लाइफ पर बात कर दी। इतना कहकर आयशा रोते हुए बाहर चली गई थी। उसकी इस हरकत पर राधिका थोड़ी घबरा गई थी। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्होंने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर वो आयशा के पीछे चली गई। उनके पीछे आदर्श भी चला गया था। ये सब देखकर इशिका की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट। राधिका उसकी कितनी भी फिक्र क्यों ना कर ले, लेकिन ये सच था कि वो उसकी माँ नहीं थी। इन सब के बीच अभिमन्यु वहां कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उनके जाते ही उसने इशिका को परेशान देखा तो वो उस तरफ आते हुए इशिका से बोला, क्या मैंने तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी शक्ल थोड़ी बहुत राधिका सिंघानिया से मिलती है? इशिका एक बार के लिए चौंक गई, फिर उसने अपने आंखों से आंसुओं को बहने से पहले ही साफ कर दिया और गर्दन छुपाकर कहा, हाँ, कई लोगों ने ऐसा कहा है। अभिमन्यु इशिका के पास आकर बैठ गया। वो जानता था कि इस वक्त इशिका को अपना दिल हल्का करने की जरूरत है, तो वो चुपचाप उसकी बातें सुनने लगा। बचपन में जब मैं मिसेस सिंघानिया के पास खड़ी होती थी, तब बहुत से लोग कहते थे कि हम दोनों की शक्ल मिलती है, तो आयशा को बहुत बुरा लगता था। वो मुझे मारती थी और धक्का देकर आंटी से दूर कर देती थी। मालविका ने भी मेरा ब्रेन वॉश कर रखा था। उसने मुझे कहा कि आयशा की वजह से अपनी जिंदगी मिली है, तो बस मैं कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप सहती रहती थी, इशिका ने भारी आवाज में कहा। इतने सालों में शायद ही किसी ने उससे उसका दर्द पूछा होगा। इशिका ने खुद के आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर आगे कहा, वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी तो मुझे लगता था कि वो मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बदकिस्मती से मुझे उसी औरत ने जन्म दिया है। दरअसल इशिका का डीएनए टेस्ट तब हुआ था जब वो किडनैप कर ली गई थी। जब बच्चों को वापस लौटाया गया, तब सबूत के तौर पर डीएनए टेस्ट हुआ था। इशिका मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन वो मालविका की ही बेटी निकली। हाँ, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। एक्चुअली तुम और मिसेस सिंघानिया देखने में एक जैसी नहीं लगती, तुम दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब उन्हें देखती रहती थी, मुझे वो अच्छी लगती थी तो मैंने उनके जैसा बनने की कोशिश की। अब अगर कोई उनके जैसा मुझे बताता है तो मुझे गलतफहमी हो जाती है कि वो मेरी माँ है, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जेनरेशन गैप की वजह से शक्ल ज्यादा एक जैसी ना हो पाई हो, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। इशिका उसकी बातें सुनकर चौंक गई थी। वो सवालिया नजरों से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। आराम करो, तुम्हें उसकी जरूरत है, अभिमन्यु ने बात को टाल दिया था। वो नहीं चाहता था कि इशिका ऐसी हालत में ज्यादा सोचे और खुद को परेशान करे।
वहीं दूसरी तरफ बाहर आकर राधिका और आयशा को आयशा मिल गई थी। उसे ठीक देखकर उन्हें राहत महसूस हुई। आयशा की तरफ जाने से पहले आदर्श ने राधिका से कहा, राधिका, अब तुम उसके सामने इशिका का नाम भी मत लेना। इशिका इतनी इंटेलिजेंट है, ऊपर से वही डॉक्टर मर्चेंट है, शायद इस वजह से आयशा को उससे जलन हो रही है। तुम उसे समझने की कोशिश करो। हमारा परिवार तभी खुश रह सकता है जब हम तीनों के बीच में इशिका और मालविका ना आए। उम्मीद है तुम इस बात को समझोगी। राधिका ने बिना मन के हामी सिर हिलाया और आयशा के पास आकर बैठ गई थी। वो वहां से चले गए, लेकिन राधिका की नज़रें अभी भी हॉस्पिटल की तरफ थीं। वो इशिका से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ प्लेन के मुताबिक मित्तल फैमिली आज गोवा से मुंबई वापस जाने वाला था। कियारा थोड़ी परेशान थी, क्योंकि इशिका ने उसे मिलने आने का प्रॉमिस किया था और वो जेल में होने की वजह से मिलने नहीं आ पाई थी। गौतम और नैना पूरे टाइम कियारा के साथ रहते थे। इस बीच उन्हें मोबाइल या टीवी न्यूज़ देखने का मौका नहीं मिला, तो वो इन सबसे अनजान थे। मॉम, डैड, अब तक मिस सिंघानिया आई क्यों नहीं है? मुझे उनसे मिलना था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आएंगी, कियारा ने परेशान होकर कहा। हो सकता है उन्हें कोई काम हो गया होगा, नैना ने उसे समझाने की कोशिश की। वो तीनों बैठे थे तभी राधिका आयशा के साथ वहां आई। राधिका चाहती थी कि आयशा कियारा से माफी मांगे, लेकिन आयशा ऐसा नहीं करने वाली थी, इस वजह से उन्हें साथ में आना पड़ा। राधिका को वहां देखकर वो सब काफी खुश भी हुए और हैरान भी। राधिका ने वहां जाकर कियारा का हालचाल पूछा और फिर गौतम से कहा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ और उस दिन मुझे ठीक से सॉरी कहने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि इसने जो भी किया है उसके लिए सॉरी शब्द बहुत छोटा है, तो मैं बस कियारा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। गौतम कुछ कह पाते उससे पहले राधिका ने कुछ पेपर्स उसके हाथ में रख दिए। गौतम ने उन्हें खोलकर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, राधिका जी, मैं ये आपसे कभी नहीं ले सकता, आप यहाँ तक मेरी बेटी से मिलने के लिए आई, मेरे लिए वही काफ़ी है, प्लीज़ मना करके मेरा दिल मत तोड़िए, वरना मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया है, राधिका ने इंसिस्ट करते हुए कहा। इस बीच आयशा बिल्कुल चुपचाप वहां पूरे घमंड के साथ खड़ी थी। कुछ भी कहने से पहले गौतम ने नैना की तरफ देखा और फिर उन पेपर्स के बारे में बताते हुए कहा, ये गोल्डन ग्लोरी होटल के पेपर्स हैं। नहीं राधिका जी, हम इसे नहीं रख सकते हैं, नैना ने भी तुरंत मना कर दिया था। गोल्डन ग्लोरी होटल पुराने ज़माने का होटल था, जिसकी शायद कीमत अब ज्यादा ना रही हो, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जो पुराने जमाने की होने की वजह से आज भी एक खास मायने रखती थी। उस जगह पर हर संडे को एक फेमस पार्टी होती थी, जिसमें सभी बिजनेसमैन खुशी से हिस्सा लेते थे। उस जगह को बहुत से लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन राधिका ने उसे कभी नहीं बेचा और आज वो अपनी मर्जी से सिर्फ गिफ्ट के तौर पर उसे कियारा को दे रही थी। मैं जानती हूँ इसे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब मैं तो दिल्ली में रहती नहीं हूँ, तो मेरा वहां से ज्यादा मतलब नहीं है, आप इसे रख लीजिए, मेरी तरफ से कियारा को एक छोटा सा गिफ्ट, राधिका ने काफी प्यार से कहा और फिर कियारा के सिर पर हाथ फेर कर उसके हाथ में पेपर थमा कर चली गई।
उसके जाते ही नैना ने कहा, ये औरत तो वाकई काफी अच्छी है, अपनी इतनी कीमती जगह इसने ऐसे ही गिफ्ट में दे दी, ये आराम से उसके बहुत सारे पैसे उठा सकती थी। ये ऐसी है क्योंकि इनकी माँ और भी ज्यादा अच्छी औरत थी, तुम उनसे मिली नहीं, शायद उन्हीं के संस्कार इनके अंदर आए हैं, गौतम ने जवाब दिया। नैना ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, माँ बेटी इतनी अच्छी है, पर अफसोस की बात है कि राधिका जी की बेटी एक निहायत ही घटिया लड़की है। आयशा का जिक्र होते ही उन सबका मुंह बन गया था और आयशा के साथ ही मिस्टर मित्तल को इशिका की याद आ गई। उन्हें भी यही लगा था कि वो राधिका की बेटी है और वो जिस मैडम मित्तल की बात करते थे वो उनकी नातिन है। हाँ, मिस सिंघानिया को आज आना चाहिए था, पर वो आई क्यों नहीं, गौतम ने भी थोड़ा बेचैन होकर पूछा। इस बीच राघव कमरे के अंदर आया और बोला, मुझे नहीं लगता कि मिस सिंघानिया यहाँ आ पाएंगी, फिलहाल वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं, कहकर उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। फिर तो मैं यहीं पर रहूंगी, कियारा ने सख्ती से कहा, मिस सिंघानिया यहाँ मुसीबत में है और मैं उन्हें छोड़कर वापस अपने घर कैसे जा सकती हूँ, नहीं मुझे उन्हीं के साथ रहना है। कियारा, ये टाइम जिद करने का नहीं है, नैना ने उसे समझाते हुए कहा। कियारा ने फिर से जिद करते हुए कहा, ये हॉस्पिटल भी अच्छा है, मैं ठीक हो जाऊंगी यहाँ भी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मिस सिंघानिया ने मेरी तब मदद की थी जब मैं मरने वाली थी, तो ऐसी हालात में मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। कियारा की बात भी सही थी। उसकी बात सुनकर नैना और गौतम ने एक दूसरे की तरफ देखा। गौतम ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, अगर मिस सिंघानिया ने सच में उस आदमी को मारा होगा तो फिर क्या होगा। कियारा की आंखें नम हो गई थी, फिर भी उसने सख्त होकर कहा, कोई बात नहीं है, अगर उन्हें सजा हो भी गई तो मैं विजिटेशन डे पर उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, वैसे भी उनके पास उनके दोस्त और रिलेटिव ज्यादा नहीं है, उन्हें बुरा लगेगा कि जब बाकी लोगों के रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आएंगे और वो अकेली रह जाएगी। फिर क्या तुम हमेशा यहीं रहने वाली हो, गौतम ने हैरानी से पूछा। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया, वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन उसे जिद करते देखकर राघव को थोड़ी राहत महसूस हुई। कियारा के साथ जब उसकी सास और पति ने बुरा किया था तब वो काफी उदास रहने लगी थी, लेकिन आज फिर से वो पहले की तरह जिद कर रही थी, इसका मतलब वो ठीक हो रही थी। हालांकि कियारा का गोवा में रुकना सही नहीं था, फिर भी राघव ने कहा, मेरा दिल्ली जाना जरूरी है, वरना मिस सिंघानिया की हेल्प के लिए मैं भी रुकता, आप लोग फिलहाल कियारा के साथ यहीं रुक जाइए और किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, अपने वेकेशन को एंजॉय कीजिए। राघव के उन लोगों को वहां रुकने की परमिशन देते ही कियारा खुश हो गई थी, वो जानती थी कि इशिका ने कुछ नहीं किया और अब वो उसका साथ देने के लिए भी तैयार थी।